कमर सार जीवकांड सार का स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणिमीय जिनिंद वर्णिमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 रूपणाओं में से 14 मारणाओं के अंतर्गत आज हम काय मारणा के अंदर आपको ले चलते हैं। गति मारणा और इंद्रिय मारणा के बारे में आपने अच्छी जानकारी प्राप्त की है। अब काय मारणा यानी प्ररूपणा के अनुसार लेंगे तो 8वीं प्ररूपणा चल रही है और मारणा में तृतीय मारणा में ले चलते हैं। काय मारणा पेज नंबर 70, गाथा नंबर 59 गाथा काय मारणा का स्वरूप। जाई अविना भावी,
जाई अविना भावी,
तस्थावर उदय जो हवे काओ,
तस्थावर उदय जो हवे काओ,
सोजिन मदम्मि भणियो,
सोजिन मदम्मि भणियो,
उड़वी काया दिछ बेओ,
उड़वी काया दिछ बेओ।
सब लोग सामूहिक कथा पढ़ें। जाई अविना भावी
तस्थावर उदय जो हवे काओ, सोजिन मदम्मि भणियो, उड़वी काया दिछ बेओ।
जात्य विना भावी त्रस्थावरोदय जो भवीत काया, सजिन मते भणिता पृथ्वी काया दिषड भेदः। यानी जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली आत्मा की जो पर्याय है उसको जिन मत में काय संज्ञा कही है, यानी काय नाम से कहा है। जिन मदम में भणियो जिनवर भगवान के मत में अगर अर्थात जैन शासन के अंदर उसको काय शब्द से कहा है। इस काय की 6 भेद हैं, पृथ्वी काय आदि 26 यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये पंच स्थावर काय हुए और एक त्रस काय। तो इस तरह से 6 भेदों में इसका विभक्त किया है। अब रही बात ये कि जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर इसका मतलब क्या है, यानी कि जो नाम कर्म है जिससे शरीर इंद्री आदि बनती हैं ऐसे नाम कर्म का अविनाभावी जो है यानी जिस जाति का जिस गति का उदय होगा वही चीज प्रकट होगी, इसको कहते हैं अविनाभावी। यानी गति नाम कर्म से जाति का ग्रहण नहीं आएगा, जब जाति नाम कर्म रहेगा तब जातियां बताई जाएंगी, गति नाम कर्म का उदय होगा तो गति बताई जाएंगी कि मनुष्य गति में तिरंज गति में नरक गति में है। तो यहाँ पर जाति से मतलब जो 84 जातियां हैं उनका अभिप्राय नहीं है, यानी जो अग्रवाल खंडेलवाल पद्मावती पुरवाल ये सब जो 84 जातियां हैं तो उनका यहाँ कथन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जाति नाम कर्म से मतलब है कि जो आत्मा की पर्याय को, आत्मा तो अजर अमर है लेकिन पर्याय नष्ट होती हैं, तो आत्मा की जो पर्याय त्रस या स्थावर रूप से जन्म लेती है उसको कहते हैं जाति। तो इसके मुख्य रूप से 2 भेद हैं, स्थावर और त्रस। तो इसमें कहा कि यद्यपि काय का अर्थ होता है शरीर, काय माने शरीर, और निरुक्ति के अनुसार ये अर्थ भी ठीक है कि जिसका त्रस का शरीर है वह त्रस काय, स्थावर शरीर है स्थावर काय, ये भी ठीक है। फिर भी यहाँ पर निरुक्ति अर्थ को जो निरुक्ति अर्थ को गौण करके एवं जो उपचरित है मुख्य नहीं है, इसलिए आचार्य ने काय का लक्षण बताते हुए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मार्गणा के प्रकरण में काय का अर्थ जाति नाम कर्म के उदय से अविनाभावी त्रस एवं स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाला कार्य यहाँ पर काय शब्द से के उदय से होने वाली जीव की पर्याय विशेष है। यहाँ पर जो कहा है त्रस और स्थावर, जब नाम कर्म के भेदों को पढ़ते हैं गति जाति शरीर इंद्रिय ये सब नाम कर्म में आते हैं। नाम कर्म ही हमारा ब्रह्मा है, जिसे कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सबको पैदा किया है। कोई एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को सृष्टि का कर्ता या लोगों के शरीर आदि बनाने के लिए जैन शासन ने नहीं स्वीकार किया। उसने ईश्वर की महासत्ता को स्वीकार करके हर प्राणी की आत्मा में छिपे परमात्मा को ईश्वर का स्वरूप प्रदान किया है। इस रहस्य को नहीं समझने के कारण कितने ही लोग जैन धर्म को नास्तिक कह देते हैं कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। लेकिन आपको जानना है कि ईश्वर में विश्वास जितना जैन शासन करता है जैन धर्म करता है उतना शायद कोई भी नहीं करता। ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते हैं क्योंकि सृष्टि अनादिकाल से चली आई है, सृष्टि स्वयं सिद्ध है, स्वयं बनी है, ना इसको किसी ने बनाया है ना इसे कोई नष्ट कर सकता है। और यहाँ सृष्टि में सृष्टि पर जन्म लेने वाले जो मानव है या जो भी प्राणी है जीवधारी प्राणी है उन सब के शरीर के अंदर आत्मा जो एक चीज है वही परमात्मा है, वही भगवान है और सबकी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है। कोई भी प्राणी अपनी आत्मा को भगवान बना सकता है। ये ईश्वर को मानने का सही अर्थ है, ना कि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जानना यह है कि सामान्यतया जाति नाम कर्म के एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक पांच भेद होते हैं। पंचेंद्री जाति है कहलाती है, फिर भी इनके त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय के संबंध से दो भेद किए गए हैं, एक इंद्री और दो इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक। स्थावर और त्रस दो में ही इन जातियों को विभक्त किया है। आगे इनके जब विश्लेषण करेंगे तब एक इंद्री के पांच स्थावर हो जाएंगे और त्रस में विकलेंद्री सकलेंद्री दो भेद आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो किया गया है कि जिनके जिन जीवों के एक इंद्रिय यानी स्पर्शन इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय पाया जाता है उन्हें स्थावर नाम कर्म का भी उदय हुआ करता है, क्योंकि एक इंद्रिय जिसके है केवल स्पर्शन इंद्रिय वे स्थावर जीव कहे जाते हैं। एक इंद्रिय से मतलब कोई भी एक इंद्रिय का यहाँ पर बोध नहीं है। एक इंद्रिय से मतलब है एक पहली स्पर्शन इंद्रिय, और जो एक केवल पहली स्पर्शन इंद्रिय जिसके होती है ऐसे वे एक इंद्रिय जीव पांच स्थावरों में विभक्त किए गए हैं। और जिनके दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक किसी भी जाति का उदय होता है तो उनके त्रस नाम कर्म का उदय पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना कि एक इंद्रिय जीव में पांचों इंद्रिय चाहे वो जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है, वनस्पति कायिक है, पृथ्वी कायिक है, जो भी हैं इनके केवल एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय रहेगी। तो जब स्थावर कहेंगे तो समझो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का भी इनके उदय है। एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक ये पांच जातियां कहलाती हैं। और जब दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के जीव को कहेंगे तो जिनके दो इंद्रियां हैं उनके द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, जिनके तीन इंद्रिय हैं उनके तीन इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, ऐसे चार इंद्रिय जीवों के चार इंद्रिय चतुर इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, और जिनके पांचों इंद्रिय हैं ऐसे जीवों के हम सभी के पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होता है। इसलिए इनको कहा अविनाभावी, यानी एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय के साथ ही उसके स्थावर पना जुड़ा है, एक इंद्रिय के बिना वो स्थावर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए अविनाभाव संबंध जुड़ा हुआ है। शरीर कर्म के उदय से आगत नौ कर्म वर्णाओं की रचना इन्हीं जाति अविनाभावी त्रस या स्थावर नाम कर्म के उदय के अनुसार हुआ करती हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर के अनुसार इन जीव विपाकी जाति आदि कर्मों का उदय होता हो, जैसा कि गाथा के पूर्वार्ध से विदित होता है। और देखा जाता है कि विग्रह गति में शरीर के उदय और कार्य के पूर्वतरस्थ स्थावर कर्मोदय के अनुसार जीव की वह पर्याय और संज्ञा विधान माना जाता है। कोई जीव पंचेंद्री की पर्याय में जा रहा है तो उसके विग्रह गति में भी पंचेंद्री जाति रहेगी। अतएव यहाँ पर काय से शरीर का ग्रहण करके कोई भ्रम में ना पड़ जाए, इसीलिए जीव विपाकी कर्मों के उदय से जन्य जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी, मतलब जिनका फल जीव में आत्मा में होता है, यानी जैसे एक इंद्रिय जाति है तो उस आत्मा के एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय रहेगा। तो ये जीव में ही उसका विपाक माने फल हुआ, उदय हुआ। और कुछ कर्म ऐसे पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां जिनका फल पुद्गल में प्राप्त होता है, तो इसीलिए जीव विपाकी कर्मों के उदय से जन्य जीव पर्याय रूप काय का लक्षण ग्रंथकारों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो अब आपने जाना कि काय किसे कहते हैं, ना कि जाति नाम कर्म के उदय से जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के पर्याय बनती हैं, आत्मा की पर्याय नष्ट होती हैं, तो जो पर्याय बनती हैं चाहे वो एक इंद्रिय जीव की है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याय हैं ये आत्मा की, ये संसारिक अवस्था में बनती हैं क्योंकि कर्म संसार में ही रहती हैं। और जब कर्मों से जीव मुक्त हो जाता है तो मुक्त कहलाता है, असंसारी कहलाता है। तो यहाँ पर संसार चुकी है, इसलिए शुरू में ही बताया कि जो संसारी अशुद्ध जीव है उसी के लिए प्ररूपणाओं का कथन किया गया है। उन 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से अशुद्धता अशुद्ध जीव के बारे में जान करके उसे शुद्ध बनाने की प्रक्रिया की ओर अपने को बढ़ना है। अब अगली गाथा लेते हैं। पृथ्वी आदि चार स्थावर का स्वरूप, स्थावर जीव कितने हैं? 5, लेकिन पहले इसमें चार स्थावर जीवों के स्वरूप को कहते हैं।
पुड़वी आउ तेउ
वाउ कमोदयेण तथेव
वाउ कमोदयेण तथेव
नियवण्य चौक जुदो
नियवण्य चौक जुदो
ताणं देहो हवे नियमा
ताणं देहो हवे नियमा।
सामूहिक गाथा पढ़िए।
पुड़वी आउ तेउ वाउ कमोदयेण तथेव नियवण्य चौक जुदो ताणं देहो हवे नियमा।
प्रतिव्यप्ति जो वायु कर्मोदयेन तत्रैव निजवर्ण चतुष्कयुतस्तेषां देहो भवे नियमान। पृथ्वी आप मानी जल, यानी पृथ्वी जल तेज माने अग्नि का है, अग्नि वायु ये चार पंच स्थावर में से प्रथम चार स्थावर जीवों को लिया है। इनका शरीर नियम से अपने अपने पृथ्वी आदि नाम कर्म के उदय से अपने अपने योग्य रूप रस गंध स्पर्श से युक्त पृथ्वी आदि में बनता है। समझे ना, जब पृथ्वी नाम कर्म का उदय आया तो उसके एक स्पर्शन इंद्री हुई और वो पृथ्वी का एक जीव बना, चाहे वो खदान का पत्थर है चाहे मिट्टी है, ऐसे पृथ्वी का एक जीवों से पृथ्वी आदि नाम कर्म के उदय से अपने अपने योग्य शरीर को धारण करके और उसमें रूप रस गंध स्पर्श आदि से युक्त वह उसी उसी में बनता है। अग्नि का शरीर धारण किया अन्य अग्नि जीव है तो वो अग्नि काय बनता है, तो अग्नि रूप से ही उसका इस पर गर्म होती है, फुलिंगे निकलते हैं, तो सबके अलग अलग गुण धर्म होते हैं, इसलिए इनसे ही युक्त पृथ्वी आदि में बनता है। पृथ्वी आदि नामकरण के उदय से पृथ्वी कायिक आदि जीवों के अपने अपने योग्य, अपने अपने योग्य से मतलब पृथ्वी के योग्य है तो पृथ्वी कायिक बनेंगे, जल के योग्य है वो जीव जल में जाएंगे, और वायु के योग्य है वे वायु का शरीर धारण करेंगे। ऐसे इनके अपने अपने योग्य रूप रस गंध स्पर्श से युक्त पृथ्वी आदि पुद्गल स्कंद शरीर रूप परिणत हो जाते हैं। आपने माचिस को तीली से जलाया, उसमें क्या, उसमें अग्नि का एक जीव शक्ति रूप में विद्यमान थे। आप अगर जल में तीली लगा दें तो वहां नहीं जलेंगे। तो अपने अपने योग्य इसलिए कहा कि अपने अपने पुद्गल स्कंद शरीर रूप से परिणत हो जाते हैं, अर्थात शरीर योग्य प्राप्त नौ कर्म वर्णाओं का परिणाम और रचना जाति अविनाभावी स्थावर या त्रस्त नाम कर्म एवं उनके अवांतर भेद रूप जीव विपाकी कर्म के उदय के अनुरूप से हुआ करती है। इस प्रकार से यहाँ पर चार स्थावर, पंच स्थावरों में से चार स्थावर जीवों को ही यहाँ पर लिया है। इसमें वनस्पति काय को नहीं लिया, वनस्पति काय का वर्णन अलग आगे लेंगे कि किस प्रकार से वनस्पति काय का स्वरूप बिल्कुल इन चार स्थावरों से अलग रहता है। उसमें सूक्ष्म साधारण और ये सब भेद उसमें आएंगे, इसलिए उनको इसके अंदर घुसाया नहीं है। तो अलग से चार स्थावर काय को समझ लेना कि जिसके अंदर जो योग्यता है, जिस रूप से उसको परिणत होना है, उस नाम कर्म का उदय उनके होता है, या जिस नाम कर्म का उदय होता है उस रूप पर्याय को, उस रूप शरीर को वो धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से काय मार्गणा के अंदर आपको ये काय का स्वरूप बताकर और फिर स्थावर जीवों की बात बताई गई है। अब आगे वनस्पति काय और त्रस काय के जीवों का वर्णन आप आगे और सुनते रहेंगे। और पुनः ध्यान देना है कि इस गोमट सार जीव कांड सार ग्रंथ की परीक्षा आपकी 28 फरवरी को होने वाली है, और 27 नंबर की गाथा से लेकर 87 नंबर की गाथा तक, वेद मार्गणा तक हम आपको उसी तक परीक्षा लेंगे आपकी, वहीं तक पेपर बनेगा। आप सबको पीछे से तैयारी करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपने प्रारंभ में केवल 26 गाथाओं की परीक्षा दी है, अब आगे 87 नंबर की गाथा तक परीक्षा देना है, इसलिए उसकी तैयारी करनी है।